आदित्य ने जल्दी से फोन किया और नदी में तलाश करने के लिए गोताखोरों की एक बहुत बड़ी टीम बुलाई। उसने आसपास के गांव तक पूरा इलाका खंगाला। उसे लगता था कि शायद किसी ने मनाल को नदी से निकाल लिया होगा। उसकी मनाल को कुछ नहीं हो सकता था। 7 साल बाद, अधिराज तुम अकेले ही आ रहे हो, आदित्य कहाँ है, वो नहीं आया? धर्मपाल जी ने अधिराज से पूछा जो देर रात घर लौट रहा था। भाई ऑफिस में बैठकर पी रहे हैं डैड, मैंने बहुत कहा घर आने के लिए मगर वो वहीं बैठे रहे, मेरे साथ नहीं आए। क्या करूं मैं इस लड़के का, कितने साल हो गए मगर अभी तक वो मनाल को नहीं भूला, क्यों बर्बाद कर रहा है वो खुद को? धर्मपाल जी परेशान हो गए। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करो। कैसे ठीक होगा अधिराज, सब ठीक होने की जगह सब बिगड़ता जा रहा है। उस दिन का एक्सीडेंट आदित्य की बर्बादी का कारण बना, कितना अच्छा होता अगर मनाल कहीं ही नहीं होती। धर्मपाल जी बहुत परेशान थे। क्या वो वहां पर अकेला ही है? नहीं डैड, कई लोग हैं उसके पास, मैंने उन्हें कह दिया है कि भाई को थोड़ी देर बाद घर छोड़ दें। डैड आप उनके आते ही शुरू हो जाते हैं, वो पूरे दिन थके हुए घर आए हैं, उन्हें रेस्ट करने के लिए तो आप कहते नहीं, उसके आते ही आपने आदित्य भाई की स्टोरी छेड़ ली, नैना धर्मपाल जी से कह रही थी। नैना तुम ये कैसे बात कर रही हो, डैड है वो मेरे, और सबसे बड़ी बात बिजनेस अभी भी भाई ही देखते हैं, सारा बिजनेस उनके दम पर है। ठीक है अब वो पीने लगे हैं मगर अगर वो ना हो तो सारा बिजनेस मैं अकेले नहीं संभाल सकता, बिजनेस को वही बढ़ा रहे हैं, अधिराज नैना से बोला। नैना पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। बोलने की आवाज़ सुनकर अनीता जी बाहर आ गईं। अधिराज बेटा आज भी ऑफिस में ही क्या? ठीक है आओ तुम खाना खाओ और रेस्ट करो, थके हुए होंगे, अनीता जी ने अधिराज से कहा। माँ निशा सो गई क्या? सोई तो बेटा वो 7 साल से नहीं है, दिन को किसी स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती है, रात को कमरा बंद करके क्या करती है पता नहीं, नींद तो उसे आती नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ इन दोनों भाई बहनों को लेकर। मेहर और मनाल खुद तो चले गए, जाते हुए इस घर का सुख चैन भी ले गए। उधर ऑफिस में आदित्य बहुत ज़्यादा पी चुका था। अधिराज ने उसकी सुरक्षा में लगे आदमियों को फ़ोन किया। तुम लोग भाई को लेकर घर आ जाओ, बहुत रात हो चुकी है, मॉम और डैड भी उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक भाई नहीं आ जाता, अधिराज ने उनसे कहा। वो लोग डरते डरते आदित्य के पास गए। उन दोनों को देखकर आदित्य बोला, घर से फ़ोन आया है क्या? अधिराज का फ़ोन था। इस लड़के को भी चैन नहीं आता जब तक मैं घर नहीं जाता। चलो फिर ठीक है, पकड़ो मुझे, मुझसे तो खड़ा नहीं होया जाता। उन दोनों ने आदित्य को सहारा दिया। सहारा लेकर वे ऑफिस से नीचे ले गए और आदित्य को गाड़ी में बैठा दिया। तुम दोनों रोज़ मुझे घर छोड़कर जाते हो, रोज़ लेने आते हो, तुम दोनों की बीवियां तुम लोगों पर गुस्सा नहीं होती जब तुम लोग रात को टाइम पर घर नहीं पहुंचते? आदित्य उनसे पूछ रहा था, रमेश और तलवार नाम के जो दो उसकी सुरक्षा में काम करते थे। सर मेरी तो शादी नहीं हुई मगर तलवार की हुई है, रमेश ने कहा। तलवार तुम्हारी बीवी तुझ पर गुस्सा नहीं होती? आदित्य उससे बोला। सर कभी कभी हो जाती है, मैं उसे कहता हूँ मेरा काम ही ऐसा है, मुझे देर तो होनी ही है, तो फिर वो चुप हो जाती है। बीवियाँ कैसी भी हों हमारी बात बड़ी जल्दी मान जाती हैं, मेरी माना भी ऐसी थी, मुझ पर गुस्सा होती और फिर मेरी बात आसानी से मान जाती, ये रोज़ का काम था। आदित्य उन दोनों से माना की बातें करता था और हर रोज़ पीकर कोई ना कोई मनाल की बात उनसे छेड़ता। उन्होंने गाड़ी रोक दी। घर आ गया है क्या, हम लोग मेंशन पहुँच गए हैं क्या? जी सर घर आ गया है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता घर जाने का, वहाँ कौन सा मेरी माना है जो मेरा इंतज़ार करेगी, तुम लोग मुझे अपने ही घर ले चलो, आदित्य जो पीछे की सीट पर बैठा हुआ था बोला। जब गाड़ी राजवंश मेंशन आकर रुकी तो धर्मपाल जी बाहर आ गए। वो गाड़ी के पास आकर आदित्य से बोले, चलो बेटा घर आ गया है, अंदर आ जाओ। आप डैड सोते क्यों नहीं, रोज़ मेरा इंतज़ार करते हैं, ये बात गलत है, आदित्य गाड़ी से उतरता हुआ बोला। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। जब मेरा जवान बेटा इतनी पीकर रात को घर आता है तो ये क्या ठीक है, धर्मपाल जी बोले। डैड आपको पता है फिर भी आप ऐसा कहते हैं, शराब पीकर ही तो मेरी रात निकल जाती है, पूरा दिन काम करके निकाल देता हूँ, अगर ये शराब ना हो तो मेरी रात कैसे निकले? उन दोनों ने आदित्य को उसके बिस्तर पर लिटा दिया था। कमरे से बाहर आते हुए धर्मपाल जी की आंखों से आंसू थे, उनके लिए बेटे की ऐसी हालत देखना बहुत मुश्किल था। धर्मपाल जी की समस्या ये थी कि ये हाल उनके बेटे का नहीं उनकी बेटी का भी था, उनकी बेटी भी अपनी दुनिया में जीने लगी थी, दिन को वो किसी गरीब बच्चों के स्कूल में पढ़ाने जाती थी और रात को जल्दी ही अपना कमरा बंद करके बैठ जाती थी।